नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक की आपको कहानी में मैंने ये सुनाया था कि अफरोज़ ने मुझसे रात की बात की और उसने बताया कि उसे मेरे हाथ से अपने लंड की मुठ मरवाने में बहुत मज़ा आया। तो मैंने उससे पूछा कि वो सब कुछ सोचकर दोबारा तो नहीं हुआ था कुछ। इस पर उसने कहा कि आप नहीं थी तो लंड खड़ा ही नहीं हुआ और मैं वैसे ही अपना लंड पकड़ कर सो गया। मैं कहता हूँ मुझे फिर से बुला लेते भाई। इस बात को सुनकर तो अफरोज हैरान हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। तो कहने लगा, तो फिर आपा आज रात का प्रोग्राम पक्का? चल हट, केवल अपने बारे में सोचता है, ये भी नहीं पूछता कि मेरी हालत कैसी है। मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चल मैं आज नहीं आती तेरे पास। अरे आपा, आप तो नाराज़ हो गए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अब आप ही को सब कुछ सिखाना है। मैंने कहा ओके। तब तक उसका स्कूल आ गया, मैंने स्कूटर रखा, उतरने के बाद मुझे देखने लगा लेकिन मैं उस पर नज़र डाले बगैर चल दी। स्कूटर के शीशे में देखा कि मायूस सा वो स्कूल जा रहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई दोस्तों कि चलो, मैंने अपने दिल की बात का इशारा तो दिया। दोपहर को मैं अपने कॉलेज से जल्दी आई, अफरोज 2 बजे वापस आया तो मुझे घर पर देख कर हैरान हो गया। मुझे लेटा देख कर बोला, आपा आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक ही समझो, तुम बताओ कुछ होमवर्क मिला है क्या? आपा कल संडे है, वैसे भी कल रात का बहुत होमवर्क बचा हुआ है। क्यों, पूरा तो करवा दिया था? वैसे भी तुमको ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सेहत पर असर पड़ता है, इससे तो अच्छा है कोई लड़की पटा लो, आजकल की लड़कियाँ भी इस काम में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। आपा आप तो ऐसे कह रही हो जैसे लड़कियां मेरे लिए सलवार नीचे और कमीज़ ऊपर करके तैयार हैं कि आओ पैंट खोलकर मेरी ले लो। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लड़की पटानी आनी चाहिए। और मैं उठकर नाश्ता बनाने लगी। मैं मन में सोच रही थी कि कैसे इस कुंवारे लंड को लड़की पटाकर चोदना सिखाऊं। नाश्ता बनाने के बाद मैंने उसे टेबल पर सजाया, अफरोज़ को आवाज़ थी और वो मेरे साथ नाश्ता करने लगा। मैंने नाश्ते के दौरान ही उससे पूछा, अच्छा ये बता, तेरी किसी लड़की से दोस्ती है? हाँ पापा, अपनी फूफी की बेटी नफीसा से। कहाँ तक? बस बातें करते हैं और स्कूल में साथ बैठते हैं। मैंने सीधी बात करने के लिए कहा, कभी उसकी लेने का मन करता है? आपा आप भी कैसी बातें करती हो, इसमें शर्माने की क्या बात है, मुठ तो रोज मारता है, ख्यालों में भी कभी नफीसा की नहीं ली, सच सच बता। लेकिन आपा ख्यालों में लेने से क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि तू उसकी असल में भी लेना चाहता है, उससे ज़्यादा तो और एक लड़की है जिसकी मैं लेना चाहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसकी कल रात मैंने ख्यालों में ली थी। तो उसने सर हिलाकर हाँ कर दी, पर मेरे बार बार पूछने पर भी वो नाम नहीं बता रहा था, बस इतना ज़रूर कहता कि उसकी चुदाई कर लेने के बाद ही उसका नाम सबसे पहले मुझे बताएगा। मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि मेरी जूत फिर से गीली हो गई। मैं चाहती थी कि इससे पहले कि मेरी जूत लंड के लिए बेचैन हो, वो खुद मेरी जूत में अपना लंड डालने के लिए गिड़गिड़ाए, और मैं चाहती थी कि वो लंड हाथ में लेकर मिन्नत करे कि आपा बस एक बार चोदने को दे दो। मगर मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था कि कैसे उसे सेट करूं। दोस्तों आप ये कहानी antarvasna.com पर सुन रहे हैं। तब तक नाश्ता ख़त्म हो गया, मैं उठ गई, अफरोज से बोली, चल कपड़े बदल कर आ जा, मैं भी बदलती हूँ। वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने गया, मैंने भी प्लान के मुकाबले अपनी सलवार कमीज उतार दी, फिर ब्रा और पैंटी भी उतार दी, क्योंकि पटाने के मदमस्त मौक़ों पर ये सब कपड़े दिक्कत करते हैं भाई। अपना देसी पेटीकोट और ढीला ब्लाउज ऐसे ही मौके पर सही होता है, जब बिस्तर पर लेटो तो पेटीकोट अपने आप घुटनों तक आ जाता है, थोड़ी कोशिश में ऊपर आ जाता है। जहाँ तक ब्लाउज का सवाल है, थोड़ा सा झुको सारा माल छलक कर बाहर आ जाता है। बस यही सोचकर मैंने पेटीकोट और ब्लाउज पहना, वो सिर्फ पजामा और बनियान पहन कर आ गया। उसका गोरा चिट्टा बदन मदमस्त करने वाला लग रहा था। एकाएक मुझे एक आइडिया आया, मैं बोली, अफरोज मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा बाम लगा दो। उसके साथ बेड पर लेटने का ये परफेक्ट बहाना था। मैं बिस्तर पर पेट के बल लेट गई, मैंने पेटीकोट थोड़ा ढीला बांधा, इसलिए लेटते ही वो खिसक गया और मेरे चोटुरों के बीच की दरार दिखने लगी। लेटते ही मैंने हाथ भी ऊपर कर लिए जिससे ब्लाउज भी ऊपर हो गया। उसे मालिश करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई। वो मेरे पास बैठकर मेरी कमर पर बाम लगाकर धीरे धीरे मालिश करने लगा। उसका स्पर्श बड़ा ही सेक्सी था, पूरे बदन में मस्त सिहरन दौड़ गई। थोड़ी देर बाद मैंने करवट लेकर अफरोज की ओर मुंह कर लिया और उसकी जांग पर हाथ रखकर ठीक से बैठने को कहा। करवट लेने से मेरी चुच्चियाँ ब्लाउज के ऊपर से आधी से ज़्यादा बाहर निकल गईं, जिसे देखकर वो तो पागल ही हो गया। तब तो यार छोकरी तैयार है और अब तो उसके साथ दूसरा खेल शुरू कर। कौन आपा? बातों वाला, यानी कभी उसके संतरों की तारीफ करके देख के कि क्या कहती है। अगर मुस्कुरा कर बुरा मानती है तो समझ ले कि पटाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पर आपा, उसके तो बहुत छोटे छोटे संतरे हैं, तारीफ के काबिल तो आपके हैं। अफरोज इतना बोला और उसने शर्मा कर अपना मुंह छुपा लिया। खैर, मुझे तो इसी घड़ी का इंतज़ार था। मैंने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया और कहा, साले मैं तुझे पटाना सिखा रही हूँ, तू मुझ पर नज़रें जमा रहा है। नहीं आपा, सच में आपकी चुच्चियाँ बहुत प्यारी हैं, वो करने का बहुत दिल करता है। ये कहकर उसने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। वो करने का दिल करता है तो बता। आपा, इनको सहलाने का और इनके रस पीने का। मतलब साफ था कि उसके हौसले बुलंद हो चुके थे और उसे यकीन था कि अब मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं तो कल रात बोलता, तेरी मुठ मारते हुए इनको तेरे मुंह में लगा देती, मेरा कुछ घिस थोड़े जाता। चल आज जब तेरी मुठ मारूंगी तो उस वक्त अपनी मुराद पूरी कर लेना। इतना कहकर मैंने उसके पजामे में हाथ डालकर उसका लंड पकड़ लिया, जो पूरी तरह से टनटना रहा था। अरे ये तो अभी से तैयार है। वो आगे झुका और अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा दिया। मैंने भी उसे बाहों में भरकर अपने करीब लिटा दिया। उसने भी मेरी गर्दन में हाथ डालकर मुझे अपने सीने से दबाया। मुझे लगा कि ब्लाउज के ऊपर से ही मेरी चुच्ची को जूस रहा है। अरे ये क्या कर रहा है, मेरा ब्लाउज खराब हो जाएगा। तो उसने झट से मेरा ब्लाउज ऊपर किया, एक निप्पल को मुंह में लेकर चूसना शुरू किया। मैं उसकी हिम्मत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकी। वह मेरे साथ पूरी तरह से आज़ाद था। अब ये मेरे ऊपर था कि मैं उसे कितना आज़ाद होने देती हूँ। अगर मैं उसे आगे कुछ करने देती तो इसका मतलब था कि मैं बेकरार हूँ, और अगर उसे मना करती तो उसका मूड ऑफ होता, शायद फिर वो मुझसे कभी बात भी नहीं करता। मैंने देखा कि उसकी नज़र अभी भी मेरी चुच्ची पर ही थी, जो ब्लाउज से बाहर थी, और वो उसे लेकर चूस रहा था। देखो, मज़ा तो मुझे भी आ रहा था और मेरी प्यास बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मैंने ज़बरदस्ती उसका मुँह चुच्ची से हटाया और दूसरी तरफ लाकर बोली, अब ये साले दो होती हैं, दोनों में बराबर का मज़ा होता है। दोस्तों, आप ये कहानी antarvasana.com पर सुन रहे हैं। उसने मेरे दूसरे मम्मी को भी ब्लाउज से बाहर किया, उसका निप्पल मुंह में लेकर चुभलाने लगा। साथ ही वो अपने एक हाथ से मेरी पहली चुच्ची को सहलाने मसलने लगा। नहीं आपा, पर सुना है इसमें बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक सुना है, पर किस ठीक से करना आना चाहिए? कैसे? उसने पूछा और मेरी चुच्ची से मुंह हटा लिया। अब मेरी दोनों चुच्चियाँ ब्लाउज से आज़ाद खुली हवा में थी। मैंने भी उन्हें छुपाया नहीं, बल्कि अपने मुंह उसके पास ले जाकर अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। फिर धीरे से अपने होठों से उसके होठ खोलकर उन्हें प्यार से चूसने लगी। 2 मिनट तक मैं उसके होठ चूसती रही, फिर बोली, ऐसे। वो बहुत उत्तेजित हो गया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोलूं, वो मेरी किस करने की प्रैक्टिस करने लगा। आपा, मैं भी तो करूँ आपको एक बार। मैंने कहा, हाँ कर ले। हम दोनों भाई बहन इस वक्त सेक्स की मस्ती में एक दूसरे को गर्म कर रहे थे। अभी तक जुदाई होने की बात खुली नहीं थी, लेकिन मेरा मन तो बन चुका था कि आज अपने भाई से चूत जुदवानी है। तो दोस्तों, बाकी की कहानी आपको मैं अगले भाग में सुनाऊंगी, आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा में। आपकी रंडी बहन आशना।